अगली सूरत है सूरतुल मरियम, वाहिद औरत जिसका नाम कुरान पाक में, और वाहिद सूरत जो किसी एक औरत के नाम पे। आइए जरा इसका एक दूर से व्यू देखते हैं। आयत 1 से 58, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर अल्लाह ताला के इनामात। 59 से 63, बुरे और अच्छे लोगों का इंजाम। और 64 से 65, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब। और आयत नंबर 66 से 98, मुशरिकीन मक्का के साथ कशमकश। क्या कुछ है इस सूरत में, अब ज़रा सा क्लोज सर्किट व्यू देखते हैं आयत के साथ। पहली 11 आयतें 1 to 11, अल्लाह ताला से मांगने वाले महरूम नहीं रहते। जी हाईलाइट कर लीजिए, वलम अकुम बी दुआ का रब्बी शकीजा। अंबिया कराम यकीन की भट्टी होते थे जिसमें जाकर लोगों का ईमान भी पकता था। आप और मैं भी अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन हम असबाब को पहले सामने रखते हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट हमारे हाथ में होती है, और अब तो ये मुद्दत आ गई, अब तो बच्चे होते ही नहीं है। फिर कहते चलो अल्लाह तू भी दे ही दे, तेरी मर्जी है तू दे दे। नहीं, उदुल्लाह वान तुमो किनू नबिल इजाबा, अल्लाह को पुकारिए इस यकीन के साथ कि मिलेगा। और अल्लाह ने फिर दिया ज़करिया अलैहिस्सलाम को, और बेटा ही नहीं दिया बल्कि खूबियों वाला बेटा दिया। आयत 12 to 15, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की अजमत। जब सिर्फ अल्लाह से मांगा जाता है ना, तो फिर कह लीजिए कि देर आयद दुरुस्त आयद। ये मिसाल फिट होती है हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पे। हनानम मिल्लदुन्ना व ज़कातन व कान तकिया व बरम बिवालिदैही वलम यकुन जब्बारा नसीया। इतनी खूबियों वाला बेटा, अल्लाह आज भी उनको देने पे कादिर है जिनको अल्लाह ने अभी तक नहीं दिया, और वो अल्लाह पे पूरी नज़रें लगाए हुए हैं कि अल्लाह किसी वक्त भी दे सकता है। शर्त एक है कि यकीन से दुआ मांगिए कि रब्बी हबली मिनस सालेहीन, और रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबा। पहली दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और दूसरी ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो सूरत आल इमरान में हमने पढ़ी। तो यकीन के साथ मांगिए, अल्लाह आपको भी अता करे जिस चीज़ से आपको अभी तक दूर रखा हुआ है। 16 to 26, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर वालिद के मौजिज़ाना विलादत का ज़िक्र है, क्योंकि अनयूजल चीज़ थी, तो ज़ाहिर है कि इसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी मुख्तलिफ ही होना था। अल्लाह ने एक मरियम नाम की बच्ची को आज़माया, और वो उस आजमाइश में कैसे पूरी उतरी इसका ज़िक्र आएगा। 27 से 36, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की गोद में गुफ्तगू, और बच्चा बोल उठा। कैसे उस बच्चे ने माँ की गोद में उस माँ की गवाही दी। क्या किसी बच्चे ने अपनी माँ का हक अदा किया होगा बाद में, जो डे वन के बेबी ने अपनी माँ पर लगा हुआ इल्ज़ाम दूर करा दिया। कहा तो यह है कि इन्नी अबिदुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, लेकिन देखा जाए तो अपनी माँ के लिए कितनी बड़ी रहमत बने ये। 37 से 40 में ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत ना मानने वालों का अंजाम है, जैसे कि आज ख़ुद को हज़रत ईसा से जोड़ने वाले मुख्तलिफ गिरोह और फ़िरके बिल्कुल भी नहीं मानते। हर एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या तो अफराद का शिकार है या तफरीद का। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम। तो वहाँ जाकर भुगतेगा इंसान हर चीज़ को, अक़ल के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फिर 41 से 48, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हक़ की दावत अपने वालिद के लिए। वस्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया। कैसे परवर्टेड माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, लेकिन माहौल की बुराई का शिकवा ही नहीं किया, बल्कि मुशाहिदा हक़ से गुज़रते गुज़रते बाप, फिर ख़ानदान, फिर बिरादरी को अल्लाह का पैगाम दिया। और फिर आयत 49 से 50 में हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ और याकूब अलैहिमुस्सलाम पर अल्लाह ताला की इनायात। यानी एक ही कड़ी के लोग थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकरुख हो गए, छोड़ दिया अपने ख़ानदान बिरादरी के गलत तरीक़ों को, तो अल्लाह ने क्या दिया उनको, वहबना लहु इसहाक़ व याकूब व कुल्लन जालना नबीया। सबसे बड़ी खुशी तो इब्राहिम को ये सुनकर हुई होगी कि नबी भी होंगे मेरे बच्चे। 51 से 53, हज़रत मूसा और हारून अलैहिमस्सलाम पर इनायात का बयान है। वस्कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसम व काना रसूलन नबीया। और साथ ही साथ आगे आता है वह अखाहु हारून नबीया, यानी दो भाई। उधर देखिए तो बेटा माँ की बेगुनाही साबित करता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए तो बेटा बाप को तबलीग कर रहा है, और इधर देखिए तो मूसा हारून के लिए नबुवत मांगते हैं। ख़ानदान और खून के रिश्ते कितने प्यारे अंदाज से कुरान पाक में बयान किए गए। फिर 54 से 55 हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तहसीन, तारीफ, कैसे घर वालों को नमाज का हुक्म करते थे, कैसे काना यामुरु अखलहु बिस्सलाति वज़्ज़का वकाना इंद रब्बिही मरदिया। अल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी मरदिया बना दे, तो हमसे राजी हो जा। और एक बार नहीं कहा बार नमाज पढ़ो, कहते ही रहते थे और प्यार से ही कहते थे, टोन नहीं बदलती थी उनकी, गुस्से वाली नमाज नहीं। और जब इंसान दर्द के साथ औलाद को मांग कहता है ना, तो सामने ना भी सही, लेकिन हमारे बाद वो ज़रूर इंशाल्लाह इन चीज़ों की तरफ आएंगे। अब तो माँ बाप ने शिद्दत से कहना भी छोड़ दिया, इतना डर पड़ गया बच्चों का और इतना हवा सवार हो गया उनकी तालीम का और उनकी जॉब का। देर से सोए, सुबह जल्दी जाना है, थोड़ा आराम कर लें, कोई बात नहीं फजर बाद में पढ़ लें। नहीं नहीं सोने दो, सुबह काम पे जाना है। अब कौन इतनी लंबी रात का इंतज़ार करे और रात 11 बजे मगरिब और इशा हो, हर एक जानता कहाँ की बातें हैं ये। क्या करते हैं हम अपने बच्चों की नमाज़ों के साथ? ऐसे नहीं थे हज़रत इदरीस, हज़रत मूसा, हज़रत इस्माइल और बाकी सब पैगंबर। तो औलाद के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाना ये भी एक अजीब किस्म की कैफियत है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है वो तो हम आगे देखेंगे। आयत 56 से 57 हज़रत इदरीस का मुकाम ख़ास, अल्लाह इनको आसमानों पर ले गया, हर मिसाल मेरे रब ने कायम करके दिखा दी है, फिर भी न मानो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो तुम्हारी मर्जी। वस्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया व रफ़अनाहु मकानन अलिया। और इतनी प्यारी बातें इन नबियों की करके, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीजीन मिन ज़ुर्रियति आदम। ये तो अल्लाह के चुने हुए लोग थे। और आयत 58 अंबिया कराम की रिक्कत कल्बी का बयान, दिल बड़े नरम थे इनके। इज़ा तुतला अलैहिम आयातु रहमान खर्रु सुज्जदम व बुकिया, रो ही पड़ते थे, सजदे की आयते हैं, सर झुका लीजिए उस रब के आगे ताकि अकल भी झुक जाए। यही हिकमत है सजदों की, दिमाग भी झुक जाए और मानना आ जाए, एक वजह समझ आए ना, अल्लाह तेरे हुक्मों पे भी झुकूंगी। आयत 59 नलायक उम्मतियों का दर्ज अमल, फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउ सलात वत्तबौ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। कैसे नमाज़ों को ज़ाया किए, इसको हम हिदायत में देखेंगे इंशाल्लाह। आयत 60 से 63 सवाले उम्मतियों का हसीन इंजाम, जन्नात यदन इल्लती वाद रहमान इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वादुहु मअतिया। ये वादा पूरा होने वाला है, मत सोचो कि ऐसी ख्वाब है, सब्ज़ बाग है, एक दिन होगा कि आप जन्नत में होंगे। और जन्नत अदन क्या खूबसूरत, जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। चार चीज़ों में से एक चीज़ जन्नत अदन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, और क्या उसकी ईंटें और क्या उसका सोना चांदी और क्या हीरे और मोती, मैं तो आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आज मेहनत कर लीजिए, खपा दीजिए खुद को, खड़ा कर लीजिए, सच्चे बन जाए अल्लाह के दीन से और इस किताब के सच्चे खादिम बन जाए। अल्लाह इज्जत मोहब्बत प्यार सब कुछ दे देगा, जो बाहर से लेते हो तुम्हें घर से मिल जाएगा। आयत 64 से 65 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुराने करीम से मोहब्बत, क्या मुझे भी है, आपको भी है, आपका दिल क्या कहता है भला? बोलने वाला मोहब्बत से बोल रहा है, सुनने वाले मोहब्बत से सुन रहे या बेजारी के साथ? हमारे चेहरों से, हमारे रवैयों से, हमारे लहजों से पता चलता है कि हम कुरान के लिए क्या हैं। छोटे बच्चों को देख कहा करें चलो कायदा पढ़ो, चलो मौलवी साहब आ रहे हैं, फिर देखिए हाँ हूँ जो आगे से करते हैं, ऐसे कुरान पकड़ते हैं जैसे कोई नावल ना पकड़े, नाउज़ु बिल्ला। तो आपको इस कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए, यही किताब है जिसके साथ कब्र में संगत हो और यही किताब फिर आगे तक साथ जाए। 66 से 72 क्या मरने के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? ये वो सवाल था जिसने लोगों को अमल से दूर किया था और आज भी करता है। وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. مکہ والوں کی جرت زیادہ تھی، وہ زبان سے کہہ دیتے تھے، آج ہم زبان سے تو نہیں کہتے، عمل اور رویوں سے بتاتے ہیں کہ ریئلی اچھا سب کچھ اس کے لیے لگا دیں، اچھا ادھر کچھ نہ کریں. چلیے بھی آپ کے بھول پنے پہ کیا کہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود آج تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آیا، تو پھر اللہ آپ پہ رحم کرے. 73 سے 76، کیا مال و اولاد والے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے؟ یہ بھی خوش فہمی ہوتی ہے کہ جب ادھر جو مل گئے بغیر مانگے تو وہاں بھی مل جائے گا. اسی لیے تو لوگ پھر، یہی تو غلط فہمی ہے جو بندے کو کام کرنے نہیں دیتی، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اور بلکہ اس میں آگے بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ اس بات کو اپنے رویوں سے بتاتے ہیں، وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. پھر اس کے بعد آیت 81 سے 77 to 80، کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ دنیا میں تو یہی لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وہاں تو اکیلی آؤ گے، 10 بیٹے بھی ہوں گے نا، ایک بھی قبر میں نہیں جائے گا، کندھا دینے تک آ جائیں گے، قبر بھی کھود دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ اندر نہیں آئیں گے. 81 سے 82، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَةً. اللہ کے سوا اوروں کے اوپر نظریں لگانے والوں کا اس سے بھی برا انجام ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کی رحیمیت ہے. آیت 83 سے 87، روزے قیامت کا حال. یوم نخشر المتقین الى الرحمن وفدا. وفد بنا کر متقی ڈرنے والے گروہوں میں اللہ کی طرف لے جائیں گے اور اس کے لے جائے جائیں گے. اور اس کے برعکس ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، اور ہانکے جائیں گے مجرم جہنم کی طرف پیاسے، جیسے بھینس، گائے، ڈھول، ڈنگر، ان کو وہ پانی کی کھرلیوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اور 88 سے 95، بدترین شرک، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. آیت 96، نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام کیا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا. کہ اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے، حتیٰ کہ آسمان سے یہ محبتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے شروع کر کے جبرائیل، پھر آسمان کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتے، اور پھر انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے لیے قبولیت ڈال دیا جاتا ہے، لوگ اس کو قبول کرنے لگتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور آیت 97، تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کا وقت نہ ضائع کیجیے، قرآن کے لفظوں پہ ہی رکھیے. ایک ایک سیکنڈ آپ کا اس سیشن میں دیکھیے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے. اگر آپ بھی مصحف سامنے کھول کے بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جملے گن لیجئے، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہو پاتی اس میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا. تاکہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبریاں دلوائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیے اس سے جھگڑالو قوم کو. اللہ ہماری زبان پہ بھی اس قرآن کو آسان کرتے ہیں. اور پھر آخری آیت سورت کی 98، دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. جی یہ ون وے روڈ ہے، دوبارہ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہے کسی کی آواز سنی تم نے کبھی قوم عاد اور ثمود میں سے کسی کی؟ تو ادھر سے جب ایک دفعہ لے جائے جاؤ گے تو پلٹ کر نہیں آؤ گے. بہت ہی دل کو اداس کرنے والی صورت ہے مریم. آئیے چند چیدہ آیات کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنائیں. آیت 55، گھر والوں کو خیر کی تلقین کیجیے. حضرت اسماعیل کا عمل، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے. اپنے لیے بھی عمل لیجئے، کہتے ہی رہیے، کہتے ہی رہیے، چڑ نہ چڑھائیے، انداز اچھا رکھیے. पहले करके दिखाइए और देर से शुरू किया है तो अब ज़रा सा फिर सब्र और हौसला भी दिखाइए। देखिए कहा ना या मुरु माजी इस्तिमरारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो याद रखिए एक आध दफ़ा कहने से बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमें भी लोग कहते ही थे, हम भी पहले अम्मी अबू के कहने पर पढ़ते थे फिर दिल कहने लग जाता है। आयत 59, नमाज का ज़ियाँ और ख्वाहिशात की पैरवी। बुरे जानशीन बखलफ अमिम बादिहिम खल्फ नदा उसलात व तबो शहबात। दूसरा काम इंजाम फसौ फ़यलकऊ नगैया। चुने हुए लोगों अम्बिया कराम और अल्लाह के प्यारे लोगों की औलादों में नमाजें ज़ाया करने वाले क्या आ गए कि उन्होंने तो उस पैगाम को भुला ही दिया, ख़त्म ही कर दिया, और वजह ख्वाहिश परस्ती। देख लीजिए जब भी नमाज कज़ा होती है तो क्या उसकी वजह कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई तमन्ना, कोई झूठी बस, सोने की, खाने की, बोलने की, शॉपिंग की। शादी हाल में बैठे हैं, मगरिब का नमाज, मगरिब की नमाज करीब है, खाना खुल गया, ख्वाहिशात है। इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से तो एक इंसान इधर से उधर डोलता फिरता है। आज इन ख्वाहिशों को सामने रख कर देखिए कितनी हमारी नमाजें खा गईं ये ख्वाहिशात। किस तरीके से आप और मैं इसको कल डिफाइन करेंगे क़यामत के दिन, सोचने की बात है, समझने की बात है। इसके ऊपर इंसान जितना गौर व फिक्र करेगा उतना उसको अपना रास्ता बेहतर दिखेगा। तो अपनी नमाज़ों के पीछे लग जाए, नमाज ज़ाया करके अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। इसके लिए तो फिर इंसान को फिक्र करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आयत 95, रोज़े क़यामत हर शख्स की तनहा पेशी होगी। वकुल्लुहुमाती ही यौमल क़ियामती फ़र्दा। और सब क़यामत के दिन उस अल्लाह के सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। पर्सन टू पर्सन अकाउंटेबिलिटी। हम सोचते हैं क़यामत के दिन एक बिग गेट टुगेदर है, हम छुप जाएंगे अब्बू के पीछे, अम्मी के पीछे, बच्चों के झुरमट में, ख़ानदान, सहेलियाँ, पता ही नहीं चलेगा, हम भी छुप के निकल जाएंगे। नहीं छुपेंगे। कुछ ऐसे सेंसर्स हैं वहाँ, कुछ ऐसी मशीनें हैं कि उसमें से अकेले अकेले गुजरना है, एयरपोर्ट्स पे लगी हुई मशीनों की तरह। आयत 97, दावत का ज़रिया कुरान हकीम। बस इसके बगैर बातें ना किया करें। फ़इन नमा यस्सर ना हो बिलिसान निकली तो बस शिरा बिहिल मुत्तकीन बिहिल मुत्तकीन व तुन्ज़िर बिही क़ौमल्लुद्दा। ए नबी, हमने ये कुरान आपकी ज़ुबान में आसान कर दिया है ताकि आप इसके ज़रिए से परहेजगारों को खुशखबरी सुना दें और झगड़ालू लोगों को खबरदार कर दें। और हकीकत है कि उस्ताद की ज़ुबान से बात सुने तो आसान लगती है, वही बात लिखी हुई किताब में देखें तो मुश्किल लगती है। और उस्ताद भी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो तो फिर तो क्या कहने। कुरान का मिजाज पढ़ने से ज़्यादा सुनने वाला है। और इसे ये समझ भी आती है कि कुरान पढ़ाने वालों को आसान बातें करनी चाहिए। इल्म वालों में बैठें, तहकीक करते हुए बैठें, उलमा में बैठें, मुश्किल बातें करें, अरबी बोलें, सरफो नाहव के राज खोलिए, लेकिन आम लोगों को तो ये किताब बस थिंग्स टू डू लगे, यूज़र फ्रेंडली लगे, माई बुक लगे, बस मैं इस पे अमल कर सकती हूँ। इतने आर्टिफिशियल बन के और ऐसी आवाज़ों में ना बताइए कि लोग पहले दुबक के बैठ जाएं कि हम तो नहीं ऐसे हो सकते, अच्छा चलो फिर इन्हीं का पल्लू पकड़ लेंगे, इनको ही कह देते हैं दुआएं कर दें हमारे लिए। तो सूरह तौहा शुरू होती है इसके बाद।